श्रोताओ नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। हम आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से आमोस नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है पाप का न्यायोचित दंड। श्रोताओ हमें पूरा विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, किंतु इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
मेरा मसीहा प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता के निकटता में रहते हुए अपने प्रियों के साथ कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने मित्रों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से आमोस नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि परमेश्वर आमोस नबी के द्वारा इसराइलियों को और अन्य पड़ोसी देशों को और अन्य लोगों को भी चेतावनी दे रहा है, और इतना ही नहीं वह उन्हें अवसर भी दे रहा है ताकि वे अपने मनों को फिराकर परमेश्वर को ग्रहण करें, परमेश्वर की निकटता में आ जाएं। मेरे प्रियो, पिछले अध्ययन में हम सब ने देखा कि इसराइल के पापों के कारण परमेश्वर अप्रसन्न होकर कहता है कि वह उन्हें सीरिया के पार अर्थात अश्शूरों की बंधुआई में कर देगा। पाप का अर्थ यह नहीं कि वे आराधना नहीं करते थे, वे विधिवत आराधना करते थे, भेंट भी चढ़ाते थे, बलि चढ़ाते थे, पर्व भी मनाते थे, परंतु देखने में तो वे सबसे अधिक धर्मी प्रतीत होते थे, परंतु वे ऐसा नहीं थे। दिल से वे परमेश्वर से दूर थे। परमेश्वर की आज्ञाओं में मूर्तों की पूजा करना मना था, परंतु वे मोलेक मूर्ति की उपासना करते थे। परमेश्वर कहता है कि न्याय को नदी के समान और धर्म को महानद के समान बहने दो, परंतु वे गरीबों के साथ अन्याय करते थे। उन्हें लूटकर वे भोग विलास का जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे परमेश्वर के निकटता में आना नहीं चाहते थे। इतना ही नहीं, वे परमेश्वर की घृणा के पात्र बन गए थे। मेरे प्रियो, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए भी सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से एक बार दिया है कि हम आपकी निकटता में आकर आपके वचनों का अध्ययन करें। इस समय जब हम आमोस नबी की पुस्तक के द्वारा से आपके वचन का अध्ययन कर रहे हैं, हमारी विनती है कि आज के अध्ययन पर भी आप अपने आशीष प्रदान करें। विशेषकर इस समय हम प्रार्थना करते हैं अपने उन श्रोता भाई बहनों के लिए जो दूर दराज में रहकर रेडियो के निकट बैठे हैं आपके वचन को सुनने के लिए, सीखने के लिए। हमारी प्रार्थना है कि आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जब वे आपके वचन को सुने तो आपका वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए, उनके जरूरतों के मुताबिक उनके जीवन में आपका वचन काम करने पाए। हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो अपने जीवन में पापमय जीवन जी रहे हैं और छुटकारा पाना चाहते हैं, सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, आज उनसे आप बातचीत करें ताकि वे समझने पाएं कि आप सच्चे परमेश्वर हैं जो उद्धार दे सकते हैं। प्रभु जी, हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार, निराश, परेशान और चिंताओं में हैं, अपने जीवन साथी की तलाश में हैं, नौकरी की तलाश में हैं या किसी प्रकार की बीमारी अवस्था में हैं। आप प्रत्येक के सुधी लें, उन्हें छुए चंगाई दे, छुटकारा दे और अपनी महिमा ले। आज अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में इसराइल के तीसरे पाप को देखेंगे जिसे उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में किया। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए परमेश्वर के उन बातों को देखें जिससे आज परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना चाहता है। आइए हम देखेंगे तीसरा पाप। आमोस नबी की पुस्तक 6 अध्याय उसके 6 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, आमोस 6 अध्याय उसके 6 पद में, और कटोरों में से दाख मधु पीते और उत्तम उत्तम तेल लगाते हो, परंतु यीशु पर आने वाली विपत्ति का हाल सुनकर शोकित नहीं होते। ध्यान दीजिए, कटोरों में से दाख मधु पीते, अर्थात ग्लास में नहीं, कटोरे में से वे पीते थे, अर्थात वे पक्के शराबी थे। आगे लिखा है, उत्तम उत्तम तेल लगाते हो, परंतु यूसुफ का और यूसुफ पर आने वाली विपत्ति का हाल सुनकर शोकित नहीं होते। इसराइलियों के जीवन में जो विपत्ति आने वाली थी, उस बात को सुन करके वे तनिक भी चिंतित नहीं थे, वे शोकित नहीं थे, न ही वे डर रहे थे। मेरे प्रियो, खुशबू का तेल लगाने वाली बात तो ऐसी आपत्तिजनक नहीं थी, परंतु हाँ, शराब पीने के कारण देश को हानि अवश्य ही पहुंच रही थी। आज हमारे देश में भी शराब का प्रचलन बहुत बढ़ गया है, जिसका प्रभाव पीने वालों पर ही नहीं, अन्य लोगों पर भी पड़ रहा है। कहा जाता है कि आपका शराब पीना स्वस्थ एवं परिपक्व हो तो चिंता की बात नहीं है। यह स्वस्थ और परिपक्व क्या है? शराबी की एक कविता है जिसमें कहा गया है, मैं पीता हूं किसी को क्या मतलब, पड़ोसी क्या सोचे, कोई कितने ही नियम बनाए, मुझे चिंता नहीं। मैं कहता हूं मैं ग्लास उठाऊंगा, मेरी आजादी कोई न रोके, मेरा पीने का अधिकार अधिकार है। मेरे प्रियो, शरीर के पाप, अवैध यौनाचार और पेटुपन, अनुचित संगीत तथा शराब, ये 3 पाप मुख्य थे, और इन्हीं पापों के कारण बड़े बड़े देश गिर गए। हम कहते हैं हम सभ्य हैं, हमारी नैतिकता ने नया रूप धारण किया है, हम दकियानुसी विचारों से मुक्त हो गए हैं, परंतु क्या हम अपने देश को संभाल पाएंगे? क्या हम अपने देश को सुधरा हुआ देख रहे हैं? मेरे प्रियो, यह भविष्यवाणी आमोस ही के समय पूरी हो गई थी। इसराइल ध्वंस किया गया और प्रजा अशुरों की बंधुआई में चली गई। पद 4 में यौनाचार और पेटुपन, पद 5 में संगीत और पद 6 में शराब, ये 3 पाप यहां पर हमें दिखाए गए हैं। आज का प्रचलित विचार भी ऐसा ही है, परंतु यह जीवन नहीं है, खाओ पियो ऐश करो, परंतु यह जीवन नहीं है। अंत में पता चलता है कि यह सोने का घड़ा नहीं था। कहने का अर्थ है कि यह अंधी ही अच्छी है, जो अपने आंखों से नहीं देख सकती, परंतु अपने जीवन में आनंदित है। मेरे प्रियो, यह मृत्यु का राज है, मनुष्य ही नहीं संपूर्ण देश का सर्वनाश हो रहा है। इससे मनुष्य का मन प्रकट होता है, उसे संपूर्ण संसार से भर दो तो भी वह संतुष्ट नहीं होगा, हर एक प्रकार के हीरे जवाहरात दे दो तो भी वह संतुष्ट नहीं होगा। यह एक विचित्र बात नहीं है क्या? मनुष्य के मन को संतोष से भरने वाला केवल परमेश्वर ही है। इसराइल का पाप संपूर्ण देश को नष्ट करेगा। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग अपने परिवार को नष्ट कर रहे हैं अपने पाप के कारण, जवान भाई बहन अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं अपने पापों के कारण। क्या आपने कभी अपने जीवन की ओर झांक करके देखा है कि आप कहां पर खड़े हैं और आप क्या कर रहे हैं? क्या आपके कार्यों से आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके प्रियजन, आपके बड़े बुजुर्ग प्रसन्न हैं? क्या हो सकते हैं आपकी बातों को जो आप करते हैं उसे जानने के बाद, या वे आपकी इन बातों को जानने के बाद अपने जीवन में शर्मिंदगी महसूस करेंगे? आपका जीवन क्या है? आमोस नबी की पुस्तक 6 अध्याय उसके 7 पद में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, इस कारण वे अब बंधुआई में पहले जाएंगे और जो पांव फैलाए सोते थे उनकी विलासिता जाती रहेगी। यहां पर लिखा है इस कारण। किस कारण? उनके कार्यों के कारण। एक प्रचारक कहता था कि जब भी आप बाइबल में इस कारण देखें तो पता लगाएं कि वह कारण क्या है। पहला, इन तीन पापों के कारण इसराइल का सर्वोच्च सर्वनाश होगा। वे बंधुआई में जाएंगे। उनकी आशा से पूर्व ऐसा होगा। तब हम अगले पद में देखते हैं, आमोस 6 उसके 8 पद में लिखा है, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर यहोवा ने अपने ही शपथ खाकर कहा है, जिस पर याकूब घमंड करता है उससे मैं घृणा और उसके राजभवनों से बैर रखता हूं, और मैं इस नगर को उस सब समेत जो उसमें है शत्रु के वश में कर दूंगा। मेरे प्रियो, उनके महल भ्रष्टाचार और लूट के भंडार थे। वे गरीबों को लूटते थे। परमेश्वर इससे घृणा करता है। यदि आप आज की आधुनिक नैतिकता, यौनाचार, पेटूपन, संगीत और शराब के बारे में परमेश्वर के विचार को जानना चाहते हैं तो आप यहां पढ़ें, इस पुस्तक को पढ़ें। परमेश्वर कहता है कि वह इन बातों से घृणा करता है। जी हां, ध्यान से सुनिए कि वह इन बातों से घृणा करता है। इन्हीं बातों के कारण इसराइल ने परमेश्वर का त्याग किया था। ये बातें आपके और परमेश्वर के बीच बाधा उत्पन्न करती है। आप इन सारी बातों को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर इनसे घृणा करता है, और यही कारण है कि आप और परमेश्वर का मेल नहीं होता है। जिससे परमेश्वर घृणा करता है आप उसे पसंद करते हैं, और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उस घृणा के कार्य को करें। मेरे प्रियो, क्या आज आप ये सोचते हैं कि जो कार्य आप कर रहे हैं उसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न है? आमोस नबी की पुस्तक 6 अध्याय उसके 9 पद में आगे लिखा है, यदि किसी घर में 10 पुरुष बचे रहें तो भी वे मर जाएंगे। ध्यान दीजिए, यदि किसी घर में 10 पुरुष बचे रहें तो भी वे मर जाएंगे। कुछ टीकाकारों के विचार में यह पद आने वाली विपत्ति है जो प्रायः युद्ध के बाद आती है। तब हम आगे देखते हैं, आमोस 6 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, जब किसी का चाचा जो उसका जलाने वाला हो उसकी हड्डियों को घर से निकालने के लिए उठाएगा, और जो घर के कोने में हो उससे कहेगा, क्या तेरे पास कोई और है? तब वह कहेगा, कोई नहीं। तब वह कहेगा, चुप रह, हमें यहोवा का नाम नहीं लेना चाहिए। मेरे प्रियो, यहां पर आप ध्यान दीजिए, यह एक विचित्र बात है, और मेरे विचार में डॉक्टर चार्ल्स फिनबर्ग की टीका उचित है। यह महामारी कैसी भयानक होगी, इसका संकेत पद 10 से हमें मिलता है। जब किसी की मृतक देह को उठाने उसका निकट कुटुंबी आएगा, तब वह उस परिवार में 10 में से केवल एक को ही जीवित पाएगा। वह भी अपने घर में छिपा उस महामारी से मरने की प्रतीक्षा कर रहा होगा। मेरे प्रियो, इसराइल की भी ऐसी ही दशा होगी। हम उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय के 19 पद के अनुसार देखते हैं, मृतकों को दफन किया जाता था। आमोस 2 अध्याय उसके 1 पद के अनुसार पार्थिव देह को जलाने पर यहोवा दंड देता है। परमेश्वर के दंड के परिणाम स्वरूप इतने लोग मरेंगे कि उन्हें दफन करने की अपेक्षा जला दिया जाएगा। यह और पहला शमूएल के पुस्तक 31 अध्याय उसके 12 पद में असामान्य विधि थी। यह संक्रमण को बचाने के लिए किया गया था। शमूएल में शाऊल और उसके पुत्रों के शवों के अपमान को बचाने के लिए ऐसा किया गया था। वे भय के कारण परमेश्वर का नाम भी नहीं लेंगे। आमोस 6 अध्याय के 11 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा की आज्ञा से बड़े घर में छेद और छोटे घर में दरार होगी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा है बड़े घर में छेद और छोटे घर में दरार होगी। बड़े छोटे, बच्चे बूढ़े, सब अशुरों की बंधुआई में ले जाए जाएंगे। तब हम देखते हैं आमोस 6 उसके 12 पद में लिखा है, क्या घोड़े चट्टान पर दौड़ें? क्या कोई ऐसे स्थान में बैलों से जोते जहां तुम लोगों ने न्याय को विष में और धर्म के फल को कड़वे फल में बदल डाला है? लिखा है, क्या घोड़े चट्टान पर दौड़ें? पहाड़ी क्षेत्र के लिए घोड़ा नहीं खच्चर काम में लिया जाता है, क्योंकि घोड़े चट्टानों पर फिसलकर गिर जाते हैं और गिर जाएंगे। तब लिखा है, क्या कोई ऐसे स्थान पर बैलों से जोते? चट्टानों में हल नहीं चलाया जा सकता है। तब हम आगे देखते हैं, तुम लोगों ने न्याय को विष में और धर्म के फल को कड़वे फल में बदल दिया है। इसराइल ने वह काम किया जो तर्क सम्मत नहीं था, धर्म के विपरीत था। और तब आमोस कहता है, तुमने मूर्खता का काम किया है, जैसे घोड़े को चट्टानों में चलाना और चट्टानों में बैलों से जोतना। मेरे प्रियो, आज हम में से कई लोग ऐसा ही मूर्खता का काम अपने जीवन में कर रहे हैं। क्या आज भी हमारे लिए सबक लेने की आवश्यकता नहीं है, सीखने की आवश्यकता नहीं है कि हम उन बातों को छोड़ करके परमेश्वर की बातों को अपना लें? आमोस आगे लिखता है 6 अध्याय के 13 पद में, तुम ऐसी वस्तु के कारण आनंद करते हो जो व्यर्थ है और कहते हो, क्या हम अपने ही यत्न से सामर्थ्य नहीं हो गए? यहां पर ध्यान दीजिए, क्या हम अपने ही यत्न से सामर्थ्य नहीं हो गए? इसराइल यरोबाम द्वितीय के सैन्य बल पर भरोसा किए हुए था और वे ये सोच रहे थे कि उन्हें विजय मिलेगी, वे जयवंत होंगे। परंतु उन्हें पता नहीं था कि उनका जीवन पापमय जीवन है, जिसके कारण से वे बंधुआई में जाने वाले हैं। आमोस नबी की पुस्तक 6 अध्याय के 14 पद में लिखा है, इस कारण सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, हे इसराइल के घराने, देख, मैं तुम्हारे विरुद्ध एक ऐसी जाति खड़ी करूंगा जो हमात की घाटी से लेकर अराबा की नदी तक तुमको संकट में डालेगी। अब हमें आमोस आगे कहता है, जो हमात की घाटी से लेकर, हमात सीरिया का मुख्य नगर था, और तब आगे अराबा की नदी तक, यर्दन पार यह एक और नदी थी जो मृत सागर में गिरती थी। परमेश्वर कहता है कि उत्तर दिशा से आने वाला यह बैरी अर्थात अशुरों की सेना संपूर्ण देश को रौंद डालेगी। उनके लिए कोई दूसरा अवसर नहीं था। मेरे प्रियो, यहां पर अध्याय 6 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 7 से जारी रखेंगे और हम देखेंगे अध्याय 7 में आमोस टिड्डियों का दर्शन के बारे में कहता है। तो आइए हम देखते हैं आमोस 7 अध्याय उसका 1 पद, यहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह दिखाया और मैं क्या देखता हूं कि उसने पिछली घास के उगने के आरंभ में टिड्डियां उत्पन्न की और वह राजा की कटनी के बाद की पिछली घास थी। ध्यान दीजिए, परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह दिखाया और मैं क्या देखता हूं कि उसने पिछली घास के उगने के आरंभ में टिड्डियां उत्पन्न की। ये टिड्डियां थी, जी हां। और तब हम देखते हैं कि वह राजा की कटनी के बाद की पिछली घास थी। उस युग में दो फसल काटी जाती थी, पहली फसल कर रूप में पूरी राजा के पास चली जाती थी, वे वास्तव में दशमांश से कहीं अधिक देते थे। अनुमान लगाया गया है कि वे अपनी उपज का दसवां भाग देते थे। यह उसका एक उदाहरण है। यहां टिड्डियां आकर सब खा गई। इसका अर्थ यह हुआ कि खेती करने वालों के पास कुछ भी नहीं बचा था। यह दंड था, उन्हें जाग जाना था। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि आमोस बहुत स्पष्ट रीति से कहता है कि परमेश्वर ने उनके बीच में टिड्डियों को भेजा और उनके फसल का विनाश हुआ, और इससे यह स्पष्ट है कि उन्हें जाग जाना था कि वे क्या कर रहे हैं, उनके जीवन कैसे हैं। मेरे प्रियो, आज कई बार हमारे जीवन में भी परमेश्वर ऐसी विपत्ति को आने देता है हमें जगाने के लिए, हमें सिखाने के लिए, ताकि हम अपने उन गलतियों को समझ सकें और परमेश्वर की ओर अपने मनों को फिराने पाएं और अपने जीवन में उन आशीषों को बटोर लें जिसे परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता है। इसराइलियों ने बहुत बड़ी भूल की, इसके बावजूद भी वे परमेश्वर की ओर नहीं फिरे। परंतु मेरे मित्रों, आज आपका जीवन क्या है? आप कैसा जीवन जी रहे हैं? क्या आप भी सब कुछ जानते हुए इसराइलियों के समान अपना जीवन जी रहे हैं और पाप में बने हुए हैं, या आप अपने मनों को फिराकर परमेश्वर की ओर आना चाहते हैं? यदि किसी प्रकार की तकलीफ आपके जीवन में है तो अपने जीवन को टटोलें, क्योंकि यह समय आपके जागने का समय है, जाग उठने का समय है, ताकि आप परमेश्वर की ओर फिर जाएं। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे कि आप जाग उठें और परमेश्वर के लिए बढ़ते चले जाएं।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।